रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रत्यक्ष की ओर करनाली प्रदेश के 5 जिलों के मतपत्र की छपाई हुई पूरी। राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल द्वारा चुनावी घोषणा पत्र किया गया। सार्वजनिक उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग के गठन के माध्यम से सभी तहों पर भ्रष्टाचार की जांच करने का है उल्लेख। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के कारण देश के मध्य और पश्चिमी हिमालय तथा उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात से जनजीवन हुआ है प्रभावित और भारत के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोगों की विमान दुर्घटना में हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के कारण आज काठमांडू उपत्यका सहित पूरे देश में मौसम में बदलाव आया है और कई स्थानों में वर्षा तथा हिमपात हुआ है। हिमपात से ठंड बढ़ने के कारण हिमालयी क्षेत्रों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये जानकारी हमारे संवाददाताओं ने दी। हिमपात के कारण हुमला की हवाई सेवा बाधित हुई है तथा लीमी, न्यालू, यारी और हिलसा सड़कें बंद हो गई है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख शंकर खड़का ने दी। भारी हिमपात के कारण मुस्तांग का काकबेनी कोरला सड़क खंड भी अवरुद्ध हो गया है। इसी प्रकार रसुआ के लांगटांग, गोसाईकुंड, नागथली, पासांग, हाकुडाडा, यारसा, भज्जांग सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आज सुबह से हिमपात होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार लांगटांग क्षेत्र में मोटी बर्फ जम गई है और घोडेत बेला तक लगातार हिमपात हो रहा है। पिछले शनिवार को हुए हिमपात से अवरुद्ध जुमला का नागम गमगड़ी सड़क खंड फिर से बंद हो गया है। ये जानकारी सड़क डिवीजन कार्यालय जुमला ने दी। हिमपात से मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अवरुद्ध होने के बाद बागलुंग और पूर्वी रुकुम की सीमा पाती हालने में फंसे 50 यात्रियों का उद्धार किया गया है। काठमांडू से रुकुम, जाजरकोट, डोलपा सहित पश्चिम नेपाल जाने वाले यात्रियों का भी उद्धार किया गया है। ये जानकारी रुकुम पूर्व की प्रमुख जिला अधिकारी सीता परियार ने दी। उन्होंने बताया कि बागलुंग प्रशासन और काठमांडू प्रशासन के समन्वय से कुछ दिनों तक इस सड़क खंड पर यातायात संचालन न करने का अनुरोध किया गया है। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग के बागलुंग खंड में भारी बर्फ जमने से यातायात अवरुद्ध हुआ है। ये जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी नवराज बराल ने दी। तरह दोलखा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालीन चौक सहित अन्य क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ है। हिमपात के बाद दोलखा घूमने गए पर्यटक उत्साहित हुए हैं, ऐसा होटल संचालकों ने बताया है। इसी बीच हिमपात और ठंड के प्रभाव से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए ज्येष्ठ नागरिकों और बच्चों को विशेष सतर्कता अपनाने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। न्यूनचापीय प्रणाली के कारण पश्चिम से प्रवेश किए मानसून के प्रभाव से सुदूर पश्चिम करनाली, लुम्बिनी और गंडकी प्रदेश के अधिकांश स्थानों में वर्षा हुई है। ये जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले 24 घंटों में सुरखेत के खानिकहोला जल मापन केंद्र में सबसे अधिक 43 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये जानकारी विभाग ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष निर्वाचन आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन की प्रतिवेदन प्रस्तुत की है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने इसी माह की 11 गति को सम्पन्न राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन की प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेल के समक्ष पेश की। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन की तैयारी के लिए मतदाता शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी जिलों में नमूना मतपत्र पहुंच चुके हैं। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। कुल 10,98,200 नमूना मतपत्र छापे गए हैं और ये मतदाता शिक्षा के लिए सभी जिलों में पहुंच चुके हैं। ये जानकारी आयोग के सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने दी। इसी तरह प्रथम पद प्राप्त निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत हुमला, कालीकोट, जुमला, मोगू और डोलपा जिलों के लिए मतपत्र छपाई का कार्य पूरा हो चुका है। आयोग ने बताया कि शेष जिलों के मतपत्र क्रमशः छापे जा रहे हैं और माघ 25 गति से फागुन 5 गति तक सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्र ढुआई करने की योजना है। समानुपातिक प्रणाली के तहत लगभग 2 करोड़ से अधिक मतपत्रों की छपाई का कार्य भी पूरा हो चुका है। ये जानकारी आयोग ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश के 481 मतदान स्थलों को अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगामी फागुन 21 गति होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सुदूरपश्चिम पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 16 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान स्थलों को सामान्य संवेदनशील और अति संवेदनशील तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 को लक्षित करते हुए सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल निर्वाचन आचार संहिता 2082 जारी की है। ये आचार संहिता आगामी फागुन 21 गति होने वाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और मर्यादित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की संचालक समिति की आज हुई बैठक से स्वीकृत ये आचार संहिता सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अंतर्गत आने वाले सभी माध्यमों, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलीविजन, ऑनलाइन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म में कार्यरत पत्रकारों और कर्मचारियों पर लागू होगी। नागरिक समाजों के अगुवाओं ने आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों को घोषणा पत्रों में नागरिकों की आवाज शामिल किए जाने की मांग की है। आज काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में 16 विभिन्न नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने घोषणा पत्रों में नागरिकों के जीवन, अधिकार और भविष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े विषय को स्पष्ट, प्रतिबद्धतापूर्ण और क्रियान्वयन योग्य ढंग से शामिल किए जाने सहित 13 सूत्रीय सुझाव साझा किए। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से नॉर्वे की राजदूत ड्यागनी मियोस ने शिष्टाचार भेंट की है। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में हुई इस भेंट के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय आपसी हित के विषय पर चर्चा हुई। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने बझांग के बित थर्ड चीर गांव पालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश बहादुर बिष्ट सहित 5 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत काठमांडू में मामला दायर किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार बझांग के बित थर्ड चीर गांव पालिका 9 स्थित सुनकूड़ा माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण में वास्तव में किए गए कार्य से अधिक दर्शाते हुए गलत बिल पेश कर अधिक मूल्यांकन किया गया और अतिरिक्त भुगतान लेकर देकर भ्रष्टाचार किया गया। इस मामले में तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश बहादुर बिष्ट के साथ साथ विद्यालय की तत्कालीन विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमेश बहादुर अधिकारी, प्रधान अध्यापक धन बहादुर बिष्ट और लेखापाल हर्क बहादुर बिष्ट के विरुद्ध 26,54,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है। इसी तरह आयोग ने बित थर्ड चीर गांव पालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश बहादुर बिष्ट और तत्कालीन सब इंजीनियर किरण भंडारी के खिलाफ भी 20,00,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दायर किया है। बारा के परवानीपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 1 रहरियाड में आज सुबह एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या में शामिल होने के आरोप में मृतक की पत्नी सहित एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवानीपुर गांवपालिका 1 रहरियाड में आज सुबह 28 वर्षीय रामेश्वर मंडल और उनकी 46 वर्षीय मां सुमित्रा देवी मंडल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जबकि उसी परिवार के 3 अन्य लोग घायल हुए थे। घटना में संलिप्त होने के आरोप में पुलिस ने मृतक रामेश्वर की 23 वर्षीय पत्नी मनीता देवी मंडल और मनीता के प्रेमी बारा के ही प्रसोनी गांवपालिका 7 बंजरिया निवासी धर्मेंद्र महतो को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय बारा ने दी। इस घटना में मनीता के ससुर 52 वर्षीय जगरूप महतो और ननद 22 वर्षीय रीना कुमारी मंडल गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका परवानीपुर स्थित एलएस न्यूरो अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारा के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुंवर के अनुसार इस घटना की मुख्य योजनाकार मृतक की पत्नी मनीता ही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना आज बारामती पुणे महाराष्ट्र के पास तब हुई जब चार्टर विमान रनवे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान अचानक आग के गोले में बदल गया और कई विस्फोटकों के साथ पूरी तरह जल गया, जिसके कारण बचाव संभव नहीं हो सका। विमान में पवार, उनके 2 स्टाफ सदस्य और 2 क्रू पायलट एयर चालक दल सवार थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रत्यक्ष की ओर करनाली प्रदेश के 5 जिलों की मतपत्र की छपाई हुई पूरी। राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल द्वारा चुनावी घोषणा पत्र किया गया साझा। उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग के गठन के माध्यम से सभी तहों पर भ्रष्टाचार की जांच करने का है उल्लेख। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के कारण देश के मध्य और पश्चिमी हिमालय तथा उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात से जनजीवन हुआ है प्रभावित और भारत के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोगों की विमान दुर्घटना में हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।